इनाया बैकसाइड के गार्डन में बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई थी। चेहरे पर उदासी, माथे पर लकीरें, सूनी निगाहें, खामोश लब और बेचैन दिल। आजकल जब वो अकेले होती तो यूं ही ख्यालों में खोई रहती थी। क्या सोचती थी ये कोई नहीं जानता था। इनाया अब भी खामोश सी बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई थी। तभी कानों में कायरफ की ठहरी हुई अट्रैक्टिव आवाज पड़ी और वो चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आई। ऐना? इनाया ने तुरंत आवाज की दिशा में सर घुमाया। सामने ही कुछ कदमों की दूरी पर कायरफ खड़ा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम कब आए? इनाया कायरफ को अचानक अपने सामने देखकर चौंक गई। उसकी आवाज भी लड़खड़ा गई और आंखें नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो गईं। बस अभी, कायरफ खेरा, फिर भौं उठाते हुए सवाल किया, तुम इस वक्त यहां अकेले क्या कर रही हो? कायरफ ने नजर आसपास घुमाई। इनाया ने भी उसकी नजरों का पीछा किया, फिर मासूमियत से तलके झपकाते हुए बोली, वो मुझे अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए मैं यहां आ गई। अकेले आई हो? कुछ हैरानी थी तो कुछ फिक्र में घुली नाराजगी। कायरफ उसे घूरने लगा था। इनाया ने फौरन गर्दन दाएं बाएं हिला दी। नहीं, आशा आई थी मुझे छोड़ने, और उसके बाद तुमने जरूर उसे वापस अंदर भेज दिया होगा और खुद यहां अकेली बैठ गई। कायरफ का घूरना बदस्तूर जारी था। इनाया ने सक पकाते हुए अपनी जीप को दांतों तले दबा लिया और साथ ही नजरें भी चुराने लगी। कायरफ की भौहें तन गईं। कितनी देर से यहां बैठी हो? इनाया ने कातर निगाहों से उसे देखा। जैसे ही नजर कायरफ की घूरती निगाहों से टकराई, उसने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें हटा ली। बस थोड़ी देर हुई है, अकेले क्यों बैठी थी? कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें कि इस कंडीशन में तुम्हें एक सेकंड भी अकेले नहीं रहना है। तुम कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? कायरफ का गुस्सा अब खुलकर बाहर आया था और इनाया किसी छोटे मासूम बच्चे जैसे मुंह लटकाए सर झुकाए बैठी हुई थी। मेरा मन था अकेले रहने का, इनाया की धीमी सी आवाज बाहर आई। कायरफ के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। इनाया ने सर उठाया और उदास निगाहों से उसे देखने लगी। तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुम नहीं आए। मैं मिस कर रही थी तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ रहना था, लेकिन तुम थे ही नहीं, इसीलिए मेरा किसी के भी साथ रहने का दिल नहीं कर रहा था। अंदर घुटन हो रही थी, इसीलिए मैं आशा के साथ यहाँ आकर बैठ गई और उसे वापस अंदर भेज दिया। इनाया की मायूसी, उसकी शिकायत करती मासूम आंखें और उदास मुरझाया हुआ चेहरा, कायरफ का गुस्सा, नाराजगी, सब धीरे धीरे पिघलता चला गया। अब कुछ था तो वो थी इनाया की फिक्र और गिल्ट। कायरफ इनाया के पास ही बैठ गया और उसकी हथेली को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। आई एम सॉरी ऐना, मैं जल्दी ही आने वाला था, लेकिन फिर काम में उलझ गया और वापस आने में मुझे इतना टाइम लग गया। तुम्हें मेरा इतना इंतजार करना पड़ा, मेरे बिना अकेले रहना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं चाहकर भी जल्दी वापस नहीं आ सका, बट मैं नहीं था तब भी तुम्हें आशा के साथ रहना चाहिए था। अगर यहाँ बैठने का दिल था तो उसके साथ बैठ जाती, तुम्हें कंपनी मिल जाती और वो भी तुम्हारा ख्याल रख लेती। मेरा अकेले रहने का दिल था। ऐना, ये वक्त तुम्हारे दिल की सुनने की नहीं है, बल्कि वो करने का है जो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए सही है, कायरफ गंभीरता से बोला और इनाया की हथेली पर अपनी पकड़ कस दी। ऐना, मैं समझता हूँ, कभी कभी इंसान का अकेले रहने का दिल करता है। तुम तो प्रेग्नेंट भी हो, मूड स्विंग्स होते होंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तुम्हारा अकेले रहना बहुत रिस्की है, किसी ऐसे इंसान का हर पल तुम्हारे साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा ख्याल रख सके, कुछ होने पर तुरंत हेल्प कर सके। समझ रही हो ना तुम्हारी बात? इनाया पूरे टाइम टकटकी लगाए उसकी आंखों में झांकती रही। कायरफ गुस्सा नहीं कर रहा था, डांट भी नहीं रहा था, वो तो बहुत ही प्यार से उसे समझा रहा था। इनाया ने धीरे से सर हिला दिया। मैं आगे से ख्याल रखूंगी। गुड, कायरफ मुस्कुराया और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, चलो अब अंदर चलें, शाम हो गई है, अंधेरे के साथ यहाँ मच्छर भी आने लगेंगे। वैसे भी हमें मानव के घर जाना है, तुम्हें रेडी भी होना होगा और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगा, उसके बाद निकलेंगे। इनाया ने एक बार फिर सर हिलाया। कायरफ ने उसे सहारा देकर उठने में हेल्प की और उसकी हथेली थामकर धीरे धीरे अंदर लेकर जाने लगा। उसने इनाया को बेड पर बिठाया और खुद कबर्ड से कुछ आउटफिट निकाल कर ले आया। आज ये पहनोगी तुम? कायरफ ने पहला आउटफिट दिखाया जो कि एक लॉन्ग गाउन जैसा था, सिंपल भी और खूबसूरत भी। फिर खुद ही मुंह बनाकर उसे साइड रख दिया और दूसरी आउटफिट दिखाने लगा। ये तुम पर इतना अच्छा नहीं लगेगा, तुम ये वाला देखो, ये मैंने कुछ दिन पहले ही स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया था। तुम्हारे बड़े हुए बेबी बम के साथ ये ड्रेस और भी अच्छी लगेगी और ये कलर भी तुम्हारे कम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में खूबसूरत सा लॉन्ग सूट था जो कायरफ इनाया को दिखा रहा था। उसके बाद उसने दो तीन आउटफिट और दिखाए और लास्ट में उठाई रेड बॉर्डर और बारीक थ्रेडवर्क की येलो साड़ी। साड़ी में बस थ्रेडवर्क था, न ज्यादा हैवी थी और ना ही ज्यादा सिंपल, लेकिन खूबसूरत इतनी कि इनाया की नजर उस पर ठहर गई और आंखों में चमक के साथ होंठों पर मुस्कुराहट भी आ गई। ये साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। लास्ट टाइम तुमने जब इस कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरे लिए तुम पर से नजर हटाना मुश्किल हो गया था। इनाया के होंठ खुले, लेकिन इससे पहले कि शब्द बाहर आते कायरव के शब्दों में मायूसी खुल गई। लेकिन अभी शायद तुम्हारे लिए साड़ी पहनना ठीक नहीं होगा। तुम खुद को संभालोगी या फिर इस साड़ी को? साड़ी में तुम्हें चलने में भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसे रहने दो। तुम इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। इनाया का चेहरा ही उतर गया। उसका दिल तो उस साड़ी पर आ गया था, लेकिन कायरव की बात भी ठीक थी। साड़ी संभालना उसके लिए थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाएगा। इनाया ने मायूसी से सर झुकाया और नजर बेड के दूसरी तरफ रखे बाकी के आउटफिट की तरफ घुमाई, जो पहले उसे अच्छी लगी थी, लेकिन अब उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही थी। इनाया ने कातर निगाहों से उस साड़ी को देखा, फिर आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं वही पहन लूंगी। ओके, लेट मी थिंक। कायरव एक एक करके सभी आउटफिट को उठाकर इनाया पर लगाकर गौर से देखने लगा। इनाया आंखें खोलकर अब पल पल बदलते उसके एक्सप्रेशन देख रही थी। काफी देर तक सोचने और सब ट्राई करने के बाद कायरव ने सेकेंड नंबर वाला लॉन्ग सूट उठाकर इनाया के हाथ में पकड़ा दिया। आज तुम ये पहनना। इनाया ने सूट को देखा, सिंपल था और उतना ही खूबसूरत, जिसे सिलेक्ट करने में कायरव को काफी मेहनत लगी थी। इनाया ने मुस्कुराते हुए उस सूट को पकड़ लिया। तुम यहीं चेंज कर लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इनाया ने सर हिला दिया। कायरव बाथरूम में चला गया और इनाया यहीं चेंज करने लगी। कुछ देर बाद कायरव हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर वापस रूम में आया। इनाया उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी नजर आई। वो चेंज कर चुकी थी और अब अपने बालों को सुलझा रही थी। कायरव धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। इनाया अपने कर्ली बालों में इस कदर उलझी थी कि उसे कायरव के आने का एहसास तक नहीं हुआ। कायरव इनाया के पीछे आकर खड़ा हो गया। इनाया की नजर मिरर पर गई तो उसे अपने ठीक पीछे खड़ा कायरव नजर आया। इनाया जैसे ही पलटने लगी, कायरव ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इनाया ठहर गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। कायरव ने उसके पीठ और कंधे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से समेटते हुए दूसरे कंधे से आगे कर दिया। इस दौरान उसकी ठंडी उंगलियां इनाया की गर्दन और कंधों को चूम गईं और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। दिल जोरों से धक धक करने लगा। इनाया जरा कसमसाई और बेचैनी भरी निगाहों से कायरव को देखने लगी।
कायरव की मोहब्बत का असर था कि उसके लम्हे भर की छुअन में इनाया उसकी बाहों में मचलने लगी थी, उसकी निगाहों की तपिश में, उसकी आगोश में पिघलने लगी थी। कायरव दिलकशी से मुस्कुराया और अगले ही पल उसने जो किया, इनाया की सांसें अटक गईं। टू बी कंटिन्यूड।